نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام اے ٹو زی، اس میں سے ہم آج کل کر رہے ہیں اخلاق اے ٹو زی، اور آج اس کا ہمارا کون سا سیشن ہے؟ تھرڈ سیشن ہے. ابھی تک ہم نے اخلاق کے نام پہ جو کچھ سنا ہے، کیا اس کے بعد آپ کو فکر لگی؟ الحمدللہ، اگر یہ فکر لگ گئی ہے تو پھر آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سارے دین کا خلاصہ ہے. آپ دیکھیے، دوبارہ اپنے ذہن میں درخت کو لائیے، روٹ کوئی بھی نہیں کھاتا. روٹ سخت ہوں، نرم ہو، پتلی ہوں، کچھ چیزیں ہیں جس کی روٹس ہم کھاتے ہیں، مثلا گاجر ہے، وہ بھی، لیکن وہ بھی اس کے اندر جب تک مٹھاس یا کوئی ٹیسٹ نہ، کوئی نہیں کھاتا. تنے کو لے لیجئے، کچھ چیزوں کے تنے کھائے جاتے ہیں، مثلا پالک ہے، اور سارے ہی کے سائی ہا سب ڈنڈل والے پھل، لیکن نسبتاً تھوڑے ہیں. آگے رہ گئی شاخیں. شاخیں کس پھل کی یا سبزی کی کھاتے ہیں، کسی کو پتہ؟ یعنی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں، دھنیے کے بھی کھاتے ہیں، اور ساگ کی، پالک کی، سیلری کا تنا کھاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ معروف چیز جو کھائی جانے والی یا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن جس کا آتا ہے، وہ کیا ہے؟ فروٹس. اصل میں یہ جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ فروٹس ہیں، پتے اور فروٹس. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ پتے کسی بھی سوسائٹی میں، جہاں بھی بہت سارے درختوں، کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن دیتے ہیں نا، اور کاربن لے لیتے ہیں. آپ کا میرا بھی یہی کام ہے، آکسیجن دینا ہے، بی پروڈکٹیو، لوگوں کو اپنی خیر دیجیے. آپ دیکھیے کہ جو چیز لوگوں تک ہماری پہنچتی ہے وہ فروٹ ہے نا. درخت کسی کے گھر نہیں جاتا. وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ آپ کو درخت گننے سے مطلب ہے، آم کھانے سے، لوگوں تک آپ کا میرا اخلاق پہنچے گا. اور یہ جو پتے ہیں نا آکسیجن دینے والے، میں جس دن سے یہ ٹاپک شروع کیا ہے، کچھ زیادہ ہی سینسٹیولی اس چیز کو آبزرو کر رہی ہوں، کن لوگوں کے ساتھ رہنا آسان ہے، کن کے ساتھ مشکل ہے. اور اس ویک کی یا اس ٹاپک کی اسیسمنٹ آپ کی، میرا خیال ہے کہ سب سے مشکل اسیسمنٹ ہے. آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں لوگوں کے سامنے کہ میرے اوپر حملے کرو، بتاؤ میری کیا چیز اچھی ہے تو کیا بری ہے، تم میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو کہ نہیں، تمہیں میں تنگ تو نہیں کرتا، تمہارے ساتھ میرا یہ معاملہ تو نہیں. میری نظر میں پھلوں میں سے بھی وہ پھل سب سے زیادہ مزے کا ہوتا ہے، اور زیادہ اور معروف ہوتا ہے جو میٹھا ہو، میٹھے بنے، نرم ہو، نرم بنے. آپ نے جاپانی پھل کھایا ہوگا، سخت ہوتا ہے نا تو زبان کھنچ جاتی ہے ایک دم کھاتے ہوئے، اور میٹھا ہو، پکا ہوا ہو، تو ایسے لگتا ہے کہ اس سے مزے کا کوئی پھل نہیں ہے. آم ایون جو پھلوں کا بادشاہ ہے، کھٹے آم، کیریاں، اور کچے آم کڑوے، اور میٹھے آم پکے ہوئے، اور جو درخت کے ساتھ آم پکتے ہیں اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے. کیا پتہ چلا آپ کو؟ مجھے فروٹ بننا ہے. آج کے بعد ایک کام کریں، یا تو فروٹ کھائیں نا، اور اگر کھائیں تو اس پہ غور کریں. میں آپ سب کو چند سیکنڈ سوچنے کا موقع دے کے پوچھتی ہوں، پھل بھی تو بہت سارے ہیں نا، ہے نا، اور کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں آبویس ہیں، لیکن کچھ پھل، مثلا آپ دیکھیے کہ زیادہ کون سے پھل استعمال ہوتے ہیں، موسٹ فیمس فروٹ کون سا ہے؟ آم، سیب، کیلا، مالٹا، انگور، اور پانچ ہو گئے، کینو، وہ موسمی، پھر وہ اس کی ساری قسمیں شروع ہو جائیں گی. ہاں، انار. جی، آپ کیا ہیں؟ آپ اپنا ٹیسٹ لکھیں، لکھیں ذرا، میں خاموش ہوں، آپ لکھیں. آپ کی نظر میں آپ کیا ہیں؟ آپ اپنے اندر سے ذرا پھلوں والی خوبیاں تو لائیں، یقین کریں. میں سوچتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ رہنے والوں پہ رحم آ رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ رہنے والوں پہ رشک آ رہا ہوتا. اور آپ دیکھیں، یہ جو آپ نے پھلوں کے نام لیے نا، ان میں دو پھل یونیورسل ہیں. آپ کسی ایئر لائنس پہ سفر کریں، آپ किसी भी जगह जाए हमें एप्पल और ऑरेंज इसका जूस ज़रूर मिलेगा। केला एक ऐसी चीज़ है कि जो हर वक्त तैयार है, रेडी टू सर्व। सफ़र में, हज़र में, खड़े चलते फिरते बैठे कुछ नहीं, कवर्ड है। फिर आप देखिए, आम अच्छा बहुत होता है लेकिन खाने में शर्म बड़ी आती है, और दूसरों के सामने खाएं और उसका रस गिर रहा हो, टपक रहा हो, लेकिन है बड़ा मीठा। अनार जैसा कोई मज़े का फल नहीं, पर उसको निकाले कौन? उसके दाने निकालने कुछ आसान काम है, कैसे करें? लेकिन अनार कहाँ उगता है? कभी आपने देखा उसके इर्द गिर्द क्या है? गुदा, और गुदा कड़वा होता है अक्सर। कभी आपके मुंह में वो कड़वा वाइट हिस्सा उसका आ जाए जो उसके इर्द गिर्द स्टेरियो फोम की तरह अल्लाह ने पैक कर दिया, अनार का दाना दूसरे से टकराए ना, बीच में फोम डाल दिया, कभी उसको देखें और उसको देखें, तो अनार से ज़्यादा फ्रेजल फल कोई नहीं होगा दानों के एतबार से। अल्लाह ने उसके इर्द गिर्द इतनी प्रोटेक्शंस लगा दी, आप और मैं कैसे कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल ही नहीं अच्छा? मैं तो बड़ी खुश अखलाक थी, बस शादी के बाद मुस्कुराना भूल गई, मुझे कड़वा कर दिया, मैं तो कभी बोली ही नहीं थी, फिर लोगों ने मुझे बोलना सिखा दिया। सोचे तो सही ज़रा, आप अपना टेस्ट दें। आप चाट बनाते हैं तो उसके अंदर एक फल डला हो या ना डला हो, फ़र्क का असर होता है। और कुछ फल ऐसे हैं कि घर में वो ना हो तो चाट बनाने का तसव्वुर नहीं आता। मैं चाट कब बनाऊंगी? जब मेरे घर में अंगूर आएगा, एक दिन खा लेंगे फ्रेश फ्रेश अच्छे अच्छे दाने, बाद में ज़रा सब वो सॉफ्ट होने लगता है, नहीं खाते लोग। फिर इसी तरह से अनार, ये दो फल जिस वक्त घर में आए तो उसके बाद चाहे मुझे केला और एप्पल मंगवाना ना पड़े, मैं चाट ज़रूर बनवाऊंगी। क्यों? खूबसूरती, सब कुछ हो चाट में, या अगर अनार या सुर्ख किस्म के ग्रेप्स ना हो या स्ट्रॉबेरी, चाट का टेस्ट होगा लेकिन खूबसूरती नहीं होगी। फ्रूट बास्केट देखिए, या चाट कह लीजिए, या जो डिज़र्ट के जिसमें हर रंग होता है, ये आपकी मेरी ज़िंदगी है। लोगों में रहेंगे तो मज़ेदार भी होगा, काम भी अच्छा होगा, खूबसूरती भी होगी। और क्या कभी आप में से किसी ने सिर्फ सेबों की चाट बनाई है? बनेगी? आप उसको चाट कहेंगे? नहीं कहेंगे। याद रखिए कि मुझे तो ऐसे लगता है पूरी कायनात जो है ना, ये इज्तमाईयत को सर्व कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है इज्तमाईयत को। किसी भी जगह मिलजुल कर रहने वाले लोग, कोई है खट्टा, मैं मानती हूँ खट्टे होते हैं, लेकिन आप देखिए कि अगर चाट में सिर्फ मीठे ही फल डालें तो खाई जाएगी, ज़रा भी गले से नहीं उतरेगी। लेमन जैसे ट्रिक कहे आप उसको, सिथरून कह दें, अगर दो तीन कतरे उसके ना डाले जाएं तो चाट चाट होती है। तो कुछ खट्टे लोग आपको चाहिए, लाजिम है। आपके काम में खूबसूरती उनकी खटास से आएगी, नमक। और मुझे तो जितना सिस्टर्स के टेस्ट का चाट से अंदाज़ा लगता है, उतना किसी से नहीं लगता। यकीन के सिर्फ नमक, थोड़ी सी चीनी या फ्रूट जूस कोई, और काली मिर्च या चाट मसाला, इन तीन के कॉम्बिनेशन से होता है। किसी की चाट को नमक का नाम नहीं है, सिर्फ एक चुटकी ऐसे पिंच पकड़ करें तो ही चाट इतनी मज़े की हो जाएगी। कुछ लोग चीनी नहीं डालते, कुछ चीनी डालेंगे तो बहुत डाल देंगे, कुछ खट्टा नहीं डालते। सिर्फ इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन में 10 सिस्टर्स का टेस्ट 10 होगा। कोई सॉफ्ट कर देता है, कोई पतली करता है, कोई खूब घोलता है, कोई फ्रूट काटेगा, कोई बड़ा बड़ा काट देता है, कोई छोटा छोटा काट देता है। यानी मैं हैरान होती हूँ कि सिर्फ इन छोटे छोटे कामों से इंसान की पर्सनैलिटी का पता लग जाता है। करना क्या है आपने? अपने आप को परखें। देखिए सच बताऊँ, ऑरेंज ऑरेंज ही रहेगा, जितनी मर्जी मेहनत मुजाहदे कर ले वो आम नहीं बनेगा। बट उसको चाहिए क्या? अच्छी किस्म का ऑरेंज बन जाए। अंगूर अंगूर है, वो केला नहीं बनेगा। उसको कोशिश क्या करनी है कि दी बेस्ट लेवल का अंगूर बने। आप पर मैं सर पटखें, दोबारा पैदा होकर दुनिया में आ जाएं, और जो नहीं होगा अल्लाह का फैसला ही है। हम अपनी असल नहीं बदल सकते। हमारा जो टेस्ट है, जो अल्लाह ने हमें बना दिए, वो नहीं बदलेगा, बिलीव मी। बस उसमें एक्सीलेंसी करें। ये है कि नो योर स्किल्स। जिंदगी में कई लोग सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू। हम सब ने अपनी स्किल्स को परखना है। हम दुनिया को दे ही नहीं सकते जब तक हमने लिया ना होगा। तो आपने, मैंने ये अखलाकियात के मौजू के अंदर डूब के अपने आप को गुजारना है। ये दूसरे देखेंगे, वही बात, तना कोई नहीं खाता तो आपकी नमाजें कोई नहीं देखेगा। हाँ, तने का टेस्ट आता है। आप देखें, रूट से, जड़ों से तो सारी खाद, पानी और नमक जाता है ना। जब ये तीनों चारों चीज़ें जानी रूट से हैं तो ईमान पक्का करें। वो कहते हैं ना कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता अपना तो बन। सच बताऊँ इंसानों में अक्सर अपने भी नहीं हैं, और ये हसरत होगी उनको जाके आगे कि हमने क्या किया। वलो अन्न लना करतन, काश एक बार हमें वापस भेज दिया जाए। फना तबर्रो मिन्हुम कमा तबर्रो मिन्ना, हम वो सारी चीज़ों से ऐसे बेनियाज हो जाएंगे जैसे आज वो हमसे बेनियाज हैं। हम अपनी ज़िंदगी ज़ाया करते हैं। जब से आपको वो रहम का कॉन्सेप्ट दिया ना कि बी मर्सीफुल टू योर सेल्फ, तो और ही दिमाग खुल गया। घर जाके भी कितनी बातें दिमाग में आती रहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आज मेरे पास आखिरी मौका है आपको अख़लाक़े हसना सिखाने का। ये सीख लिया ना तो अख़लाक़े सैया कुछ भी नहीं है। अच्छी चीज़ें हों और बुरी आ जाए, या अच्छी चीज़ें ना हों और बुरी आ जाए, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको पहले अच्छा बनना है, और अच्छा बनना बहुत मुश्किल है। तो ज़रूरत है इस बात की कि अपनी ज़िंदगी के जो बाकी दिन है ना उन पर रहम करें हम। दिस वर्ल्ड इज़ द लास्ट एंड ओनली अपॉर्चुनिटी टू सेट योर स्टेटस इन हेयर आफ्टर। देखिए ना, आपके सिर्फ एक मौका होता है ज़िंदगी में स्टेटस चूज़ करने का। मतलब पाकिस्तान में अगर आप तालीम लेते हैं ना, तो मैट्रिक के बाद आपके पास चॉइस होती है। दो मेन चॉइसेस होती हैं बेसिकली, पिक वन और टू। इफ़ यू विल टेक साइंस और यू विल टेक आर्ट्स, आर्ट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। साइंस लेंगे ना तो फिर उसमें दो फील्ड आ जाते हैं आगे, बॉटनी जोलॉजी। यानी आप साइंस का फिर कोई फील्ड ले लें, डॉक्टर बनना है तो जोलॉजी ले लें, और दूसरी तरफ जाना है कोई एक्स्ट्रा रिसर्च वर्क में तो बॉटनी। आर्ट्स ले लें ना तो 10 बार ऑप्शंस हैं, कुछ भी बन ले। यानी हमारे यहाँ ये कहते हैं जो साइंस नहीं लेता फिर उसको आर्ट्स तो लेनी पड़ती है ना। अब वो मैट्रिक का मौका गुजर गया, या आप FSC करेंगे या आप FA करेंगे, ये बांट है। जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको FSC बोलते हैं वहाँ, और जो आर्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनको FA बोलते हैं। FSC वाले आगे चाहे तो मेडिकल में चले जाएं या फिर BSC कर लें किसी भी सब्जेक्ट में, और जो FA वाले हैं वो BA करेंगे। ये एक मोटी सी बांट आपको सिर्फ बता रही। अब अगर आपको ख्याल आ गया कि आपने गलत चूज़ किया, आप मैट्रिक से वापस आकर दोबारा शुरू करेंगे। बात समझ गए? यानी आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते अगर मैट्रिक के बाद आपने आर्ट्स चूज़ कर लिए। यू लूज़ ऑल द अपॉर्चुनिटी टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि उस वक्त आपके से एक चॉइस। चलिए दुनिया में कोई कहता है मैं रिपीट कर लेता हूँ, लेते कोई नहीं, वैसे प्राइवेटली करना पड़ेगा आपको। इस दुनिया से अगली दुनिया के अंदर जाने, वहाँ सेट होने, वहाँ के स्टेटस के लिए मेरे आपके पास कितने मौके हैं। और मैं दिन में, रात में, हर हफ्ते में, हर महीने में कितने मौके ज़ाया कर रही हूँ। क्या हाल होगा उस कारोबारी शख्स का, उस बिजनेसमैन का, जिसने राइट वक्त पे राइट डिसीजन ना लिया और बैंकरप्सी हो गई, और उसी का मुलाजिम अक्लमंदी की वजह से या अच्छे तरीके से काम करने की वजह से उसकी जगह पे कल चंद साल बाद बैठ जाए। बिलीव मी, टेक इट सीरियस, दिस इज़ वेरी 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 सीरियस मैटर। 1 साल की सेल ख़त्म होगी, अगले साल फिर लग जाएगी। आप एक थैंक्स गिविंग के ऊपर शॉपिंग नहीं कर सके, आप अगले पे कर लीजिएगा, सेलें तो लगती ही रहती हैं। आप क्रिसमस की सेलों से कुछ ले लीजिएगा, बहुत सारे मौके हैं। इस साल नहीं तो इस साल, अगर अभी नहीं तो अगले, मैं इस स्टोर से नहीं लिया अगले से ले ले, वी हैव हंड्रेड्स चॉइसेस। लेकिन इस दुनिया से आगे का डिसीजन लेना, दिस इज़ वेरी बिग डिसीजन, एंड मेरे लिए दिस इज़ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ। एक लेक्चर मैंने दिया था, मेरे लिए 5-6 माह हो गए होंगे, पता नहीं कहाँ दिया था, डिसीजन मेकिंग। यकीन करें हम अपने फैसलों की पैदावार हैं, वी आर द प्रोडक्शन ऑफ आवर डिसीजंस। कितनों को फ्लायर मिला, कुछ ने डिसाइड कर लिया आने का, कुछ ने नहीं किया। आप जिसको भी दिखाते हैं ना कोई इनविटेशन, नया कोर्स शुरू हो रहा हो, सके कि सोच समझ के यस या नो करना, या आपका कोई एक फैसला है जो आप करेंगे। कल मुझे पता नहीं कौन सुना रहा था, वो कहती है कि मैं अपना घर का ड्रॉ सही कर रही थी, और उसमें कुछ चीज़ों में एक पेपर ऐसे जैसे कुचला मुचला नहीं होता, इसको स्क्रम्बल कर दें, तो वो पड़ा हुआ था, तो मैं सही करते हुए खोल के उसको ऐसे ही देख के थी, मुझे नहीं पता मेरे घर में कहाँ से। तो जब उन्होंने देखा तो वो कोई कोर्स था, कोई कोर्स था, और वो कल ही था, नेक्स्ट डे था। तो उसने कहा अच्छा कल शुरू हो रहा, लेट मी सी। देखें ये क्या है। और वो दिन और आज का दिन, वो ऑनलाइन के एक बेहतरीन स्टूडेंट है, कल मेरी उनसे ही बातें, अब मुझे याद सारी कहानी है। यानी दिस इज अपॉर्चुनिटी, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। जो भी आपको कुछ मिलता है, आपके साथ जो कुछ भी होता है, ये अचानक नहीं होता। मैं सोच रही हूँ कि ये जो हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया ना, इस्लाम ए टू जी का, इन्वेस्टर्स इस्लाम, ये भी आप में से बहुत सारों के लिए फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटी होगी। बिलीव मी, मैं खुद अपने जहन से सोच रही हूँ, आपको भी नहीं समझ आएगी क्योंकि मैं इन सारे रस्तों से गुजरी हूँ जहाँ पे आप चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए ना कि अकीदा कहाँ है, इबादत किधर है, और मामलात किधर हैं, अखलाकियात किधर हैं, ये पूरा कुरान पढ़ के इस तरह क्लियर तो नहीं हुए थे ना। और तीन तीन कोर्सेज किए हुए, इवन पढ़ाते हुए लोगों के भी क्लियर नहीं है। मैं अपने तौर पे आपके लिए खुश हूँ, जैसे एक माँ अपने बच्चों को कोई चीज़ मिलता देखे खुशी, मैं खुश हूँ कि आपको नहीं पता कि सिर्फ 16 दिन के कोर्स ने आपको जहनी तौर पर कितना सॉर्टेड कर दिया है। फिर आप कोई चीज़ छोड़ते हुए सोचोगे कि ये रूट है, और ये छोड़ते हुए सोचेंगे स्टैम्प है, और ये छोड़ूंगी तो ये होगा, और ये छोड़ दिया तो दरख्त ही नहीं सिर्फ तना ही हो। आज यही हो रहा है, लोगों ने रूट छोड़ी हुई है तो तनों पे बात कर रहे हैं, और तने छोड़कर लोग जाल पे बात कर रहे हैं, और जाल को छोड़कर फल फल की बातें हो रही हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग आज के दौर में, लोगों के अपने अपने कॉन्सेप्ट तो बताएं। और ये दावा टेक्नोलॉजीज़ हैं, किसी से भी दावा पे बात करनी होती है ना, पहले उसका पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ता है। और अगर बीच की एक लड़की तो अपने किसी मतलब फियांसी कह लें या दोस्त से, मतलब वो चाह रही है कि वो मुसलमान हो जाए और दिस एंड दैट, लेकिन अभी बीच में कई ऑब्स्टिकल्स उसके अपने भी हैं, बात समझ रहे। तो हम किसी एक चीज़ पे ले आए तो दूसरी ना की हो। मिसाल है कि आपके सामने एक शख्स सिगरेट पीता है, इज़ वेरी बैड थिंग, अखलाकी एतबार से वो बहुत ही नामाकूल हरकत है, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वी डोंट हैव द राइट टू से समथिंग अबाउट स्मोकिंग। ये समझा रही। इसी से फिर दावत और तबलीग भी आपकी सिस्टमेटिक हो जाती, कब कहाँ किसको क्या कहना है और कहाँ नहीं कहना। हमें कहना सिखाया जाता है, यानी बोलना सिखाया जाता है, चुप रहना नहीं सिखाया जाता। तो अब आप देखिए कि हम यहाँ आज जिस मौजू पे लेकर खड़े हैं अपने आप को, मैं इस पूरे को, ख़ास तौर पे अखलाक मेरा ये फेवरेट टॉपिक है हमेशा से, आपका भी होगा, कि ये है वो टॉपिक जिसकी वजह से लोग मेरे के साथ खुश होंगे या मेरे साथ खुश नहीं होंगे। ये है वो चीज़ जिसकी वजह से लोग मेरे साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और कभी नहीं। ये है वो टॉपिक जिसकी वजह से झगड़े होते हैं या नहीं होते हैं। ये है वो टॉपिक जिसकी वजह से घर टूटते हैं या घर बनते हैं। ये है वो टॉपिक जिसकी वजह से एक शख्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर जाता है बिजनेस उसका, क्योंकि उसका अखलाक बड़ा अच्छा होता है, और दूसरा बिल्कुल डंप हो जाता है। यानी आप कह लीजिए वी आर ऑल अबाउट आवर अखलाक, अखलाक खुल्क खल्क वो सब पढ़ चुके हम। और देखिए अब कुछ चीज़ें तो आप अपनी करेंगे ना, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू फॉर योर किड्स, अगर आप में कोई किसी बेबी की मदर है या अगले आने वाले बेबीज, बिलीव मी स्टार्ट विद देम। बच्चे की माँ के पेट से ही आदत डेवलप होना शुरू होती है। जैसे मैं किसी को बहुत करीब से जानती हूँ, उनकी ईटिंग हैबिट हम सबसे फ़र्क है, यानी आम जो हमारे इंडो पाक कल्चर है उससे 100% नहीं तो कम से कम 70% डिफरेंट है। तो जब मैंने रूट में जाकर देखा कि आखिर ये कोई नया बंदा दुनिया में आया हुआ, सभी को भूख लगती है, सब बार बार खाते हैं, जो मिले खा लेते हैं, हम तो रात 12 बजे भी उठ के चलेंगे, चलो जी अब टिक्के खाएं, अब मिर्चें लगी हैं, अब आइसक्रीम खाएं, अब आइसक्रीम ज़्यादा खा ली है तो अब कावा पी लें। ये बंदा क्यों नहीं खाता? वजह क्या? पीछे से बचपन से माँ की आदत है। माएँ ऐसे, वो बच्चे को दूध देती नहीं, एक माँ थी दूध बना के ना फीडर ऐसे रखा हुआ है माँ के बच्चे का, तो दे नहीं रही, हालांकि बच्चा क्रैंकी हो रहा है, तो कह रही नहीं, घड़ी देख के मुझे कहने लगी नहीं अभी इसका टाइम नहीं हुआ, अभी 5 मिनट रहते हैं, अभी 5 मिनट रहते हैं, मैंने जिस वक्त इसको दूध देना है मैं उससे पहले नहीं दूंगी, बना के रखा हुआ दे नहीं रही, बच्चा भी मांग रहा नहीं दे रही। ये जिसको आप कहें क्या, अनएक्सप्लेनेबल या इनविजिबल किस्म का हमारा करेक्टर बन रहा होता है। वाकई दिल तो यही चाहता है कि कोई पीछे ले जाए आपको और हम नए सिरे से खुद बने, अपनी हैबिट्स को, आदत को बदल कर देखें, फिर हम इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारे घरेलू हालात बड़े फ़र्क होंगे, हम जहाँ जिन लोगों में चलते फिरते हैं उनसे हम बहुत फ़र्क होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक मोजज़ा था, दैट वाज अ मिरेकल ऑफ द प्रॉफिट, कि आपने लोगों के अंदर की खैर को निकाल दिया और जो शर था उसको दबा दिया। जो शरीर किस्म के लोग होते हैं ना वो भाग जाते हैं, वो नहीं रहते, अल्लाह के नबी के साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन जो आपके साथ थे ना वो कह लीजिए कि मंझ गए, क्रीम ऑफ द सोसाइटी बन गए। अब देखिए ना हर साहबी आपने पढ़ा कितने पढ़ लिए? 9 पढ़ लिए ना। आप कौन में से कोई बद अखलाक दिखा, बुखल दिखा, उसमें स्टिंजीनेस दिखी? नहीं दिखी ना। तो ये किसने किया? वो कोई माँ के पेट से ऐसे तो नहीं आए थे? वो तो बिगड़े हुए थे। नबी को तो बिगड़े हुए लोग मिले, लेकिन अल्लाह के नबी की तालीमात ऐसी थी, तरबियत ऐसी थी कि वही बात है कि जो लुटेरे थे वो मुहाफिज बन गए। तो हमें इंशाल्लाह अपने ऊपर काम करना है, वेरी प्रैक्टिकल है ये। और अल्लाह करे कि हम अभी से अपने ऊपर और अपने बच्चों के साथ, जो भी छोटे हैं, आपके छोटे बहन भाई भी होंगे, हर वो बंदा जो आपकी बात सुनता है ना, आप उसके साथ ये बातें शेयर करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आज हम तरतीब के साथ जो चल रहे हैं उसमें जो हमारा अख्लाक है वो अमूमी तौर पे, ये हम राइट्स में नहीं करेंगे, याद रखिए। हकूक और जो फ़राइज़ थे वो हम कर चुके, यहाँ सलूक की बात है, इसको भी समझ लें। एक है हकूक और फ़राइज़, वो कहाँ पढ़े हमने? मामलात में पढ़े। यहाँ क्या है? हुस्ने सलूक, यानी आप औरतों के साथ हुस्ने सलूक पढ़ने लगे, आपको हकूक नहीं दिए जा रहे। ये क्यों कहा गया? इसलिए कि जिस माशरे में अल्लाह के नबी सल्लम आए और उन्होंने इस दीन को पेश किया, वहाँ तो औरत को जीने का भी हक नहीं था। सूरत तकवीर आयत 8 और 9, व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, और जब जिंदा गाड़ी गई लड़की से पूछा जाएगा वो किस गुनाह में कत्ल की गई। क्या पता चला? हुस्ने सलूक का सबसे पहला अमली इजहार क्या है? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जीने का हक दिलवाया। बात वाज़े? जिस माशरे में अल्लाह के नबी थे वहाँ बेटी होना तो बड़ी ही अजीब बात थी। दो दफ़ा तो कुरान पाक में आप पढ़कर आए हैं ना, सूरत नहल, कि जब किसी को वइज़ा बुश्शिरा अहदुकुम, जब तुम में से किसी को खुशखबरी दी जाती है या खबर सुनाई जाती है बेटी की पैदाइश की, क्या होता है उसके चेहरे का हाल? मुस्वद्दा, स्याह हो जाता है, काजमीन, कजूम, गम के घूंट भर रहा होता है। अल्लाह के नबी ने ऐसे माशरे में बेटी के लिए क्या हुस्ने सलूक बताया? बुखारी की रिवायत 5995, हज़रत आयशा इसकी रावी हैं, कहती हैं, मेरे पास एक औरत अपनी दो बच्चियों के हमराह मांगने आई, मेरे पास सिवाय एक खजूर के कुछ भी ना था, मैंने वो खजूर इसको दे दी, इसने वो खजूर अपनी दो लड़कियों में तकसीम कर दी, यानी कुछ था नहीं, जो था वो उसने आधा आधा उनको दे दिया। अब क्या हुआ? फिर उठकर चली गई, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो मैंने आपसे इसका जिक्र किया, तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला जिसको इन बेटियों के जरिए किसी भी आजमाइश में डाले और वो इनके साथ बेहतर सलूक करे तो वो इसके लिए जहन्नम से बचाव का जरिया होंगी। तो सबसे पहले तो देखिए कि औरतों में हुस्ने सलूक में बेटी। आज आप और मैं जिस माशरे में रहते थे या जिनसे ताल्लुक़ है, वहाँ बेटी अच्छी नहीं समझी जाती। आज भी बेटी का होना बुरा शगुन समझा जाता है, आज भी इंतज़ार बेटे का ही होता है, फिर बेटी आ जाए तो बेचारियाँ लाड़ दिखा दिखू के प्यारी लगती हैं। और ये बिग रियलिटी, खबर सुनकर बेटे की ही खुशी होती है, ये अलग बात है कि बाद में बेटियाँ ज़्यादा प्यार लेती हैं, प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, उनके कपड़े, उनकी हाल हुलिया, उनकी बातें, और मोहब्बत भी उनमें होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने बेटियों के साथ अच्छा मामला करने का कैसे हुक्म दिया, इसको भी सुन लीजिए, क्योंकि बेटी एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे तो पूरी एक बुक है, अगर आपको कभी मौका मिले पढ़ने का, डॉक्टर फजल साहब की है, बेटी ही नाम है उसका, यानी रोते रोते पढ़ने वाली बुक है कि बेटियां इस्लाम में हैं क्या, और फिर उन्होंने डिफरेंट एंगल से उसको जोड़ा है। ये जो रिवायत है ये बुखारी की है, 6387, हज़रत जाबिर से ये रिवायत है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मेरे वालिद शहीद हो गए तो उन्होंने अपने पीछे 7 या 9 बेटियां छोड़ी, इनकी क्या लगी? बहनें। अब ये 7 थी कि 9 थी, ये रावी को गलती लगी है, जाबिर को नहीं गलती लगी। खैर, कहते हैं कि मैंने एक औरत से शादी की, अल्लाह के नबी ने पूछा, जाबिर क्या तुमने शादी कर ली? मैंने कहा जी। कहा कि कंवारी से या ब्याही हुई से? तो मैंने कहा कि पहले से ब्याही हुई थी। फरमाया किसी कुंवारी से क्यों ना की, क्योंकि ये खुद कुंवारे थे, यंग थे। तुम इसके साथ खेलते, वो तुम्हारे साथ खेलती, तुम इसे हंसाते, वो तुम्हें हंसाती, मुराद ये कि तुम्हारी हम उम्र होती है, तुम्हारे मिजाज और सोच बदलती, तो लाइक माइंडेड तुम्हारे मशगले होते। तो मैंने कहा मेरे वालिद अब्दुल्ला शहीद हुए और सात फिर या नौ बेटियां छोड़ गए, तो मैंने पसंद ना किया कि इन्हीं जैसी एक और लड़की ले आऊं। यानी अगर मेरी बीवी भी छोटी उम्र की होगी तो मेरी बहनों की तरह की जंग उम्र की होगी, तो बड़ी औरत से की जो कि उनकी निगरानी कर सके। ये बात सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तुम्हें बरकत दे। तो ये किसका हक है या किससे हुस्ने सलूक है? बहनों से, बहनों से। जाबिर ने अपनी बहनों के मुस्तकबिल को नज़र में रखते हुए खुद एक बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ली। तीसरा रूप औरत का क्या होता है? बीवी। सुन लीजिए, नसाई 339, अनस राजी हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया, दुनिया में मुझे महबूब बना दी गई, यानी मुझे जो पसंद हैं क्या हैं? अन्निसाओ वतीब, औरतें और खुशबू। यानी मुझे दुनिया की चीज़ों में से जो चीज़ें पसंद हैं वो क्या हैं? बीवी और खुशबू। वजुइला कुर्रतु आइनी फिस्सलाती, और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई। सुबहान अल्लाह। यानी आपने बीवी को दुनिया की खूबसूरत चीज़ कहा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखिए कि ये भी चीज़ एक बहुत प्यारी है, और ये तो आपका बीवियों से प्यार था ना, आपका अपनी बेटी से क्या प्यार था? तो सुन लीजिए, सही मुस्लिम की रिवायत है 6307, और बाप है फ़ज़ाइलुस सहाबा अब्दुल्ला बिन उबैदुल्ला से रिवायत है, मिसवर बिन महरमा ने कहा कि अल्लाह के नबी को मैंने मिंबर पर ये कहते हुए सुना, क्या? फ़इन्नमा, बस सिवाय इसके नहीं, यानी बेशक बेशक मेरी बच्ची इब्नती कौन? फातिमा, बदअतुम मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो चीज़ इसे परेशान करेगी वो मुझे भी परेशान करेगी, और जो बात इसे अजियत देगी वो मुझे भी अजियत देगी। सुबहान अल्लाह। बेटी से इतना प्यार अल्लाह के नबी को। फिर आप देखिए कि ओवरऑल आपने औरतों के साथ अच्छा सलूक करने का कैसे हुक्म दिया। बुखारी की रिवायत है 5975, हज़रत मुग़ीरा इसके रावी हैं, आपने फरमाया अल्लाह ने बेशक तुम पर माओं की नाफरमानी हराम कर दी, अदायगी हकूक से हाथ रोकना और नाहक इनसे मुतालबात करना भी हराम करार दिया, और लड़कियों को जिंदा दरगोर करना, और तुम्हारे लिए ला जानी यानी गुफ्तगू और सवालों की कसरत और माल का जिया नापसंद किया। यानी आपने कहा कि माओ की नाफरमानी हराम है। देखिए लफ्ज़ हराम बहुत कम इस्तेमाल होता है इस्लामी शरीयत में, ये अलग बात है हमारी ज़ुबान में बहुत आम हो गया। माँ की नाफरमानी, हकूक का लफ्ज़ है हकूक की तरह, यानी माओ की नाफरमानी हराम है, इतना बड़ा हुक्म दिया। और इसी तरह से जनरल ख़वातीन के मामले में अल्लाह के नबी ने क्या कहा? सही मुस्लिम की रिवायत है 750, किताबुल खैज़, अंसार की औरतें भी बहुत खूब हैं। हज़रत आयशा का ये कॉल है, कहती कि अंसार की औरतें भी बहुत खूब हैं, दीन की समझ बूझ हासिल करने के सिलसिले में शर्मो हया इनके लिए रुकावट नहीं बनती। मतलब क्या कि अच्छी औरत कौन होती है? जो दीन सीखने के मामले में बिला वजह की शर्म और हया नहीं रखती। बात में इंसान ये सोच के नहीं बोलता, नहीं बोला तो पता नहीं कोई क्या कहेगा, कोई क्या समझेगा। और अल्लाह के नबी भी ऐसी औरतों की तारीफ़ करते थे जो इल्म के मैदान में बेबाक होती थी, जिसमें काम करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीका से आपकी शादी का एक बहुत बड़ा मकसद उम्मत को एक अच्छी उस्ताद देना भी था। आपके बाद तकरीबन नस सदी तक हज़रत आयशा उम्मत की खिदमत करती रहीं। फिर इसी तरह से आपने औरतों को अमली मैदान में भी दाखिल होने का, यानी जिहाद का मैदान, अल्लाह के दीन के दिफा का मैदान, उसके लिए भी आगे जाने की रग़बत दिलाई। बुखारी की रिवायत है 2924, हज़रत उम्मे हराम जो है वो बयान करती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को ये कहते हुए सुना, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदर में जंग करेगा इसके लिए जन्नत वाजिब है। हज़रत उम्मे हराम ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, क्या मैं भी इनमें शामिल होगी? फरमाया तुम भी इनमें शामिल होगी। ये कौन सा मामला था भाई? जिहाद में जाने की बात सुनकर सहाबिया ऐसे खुशी से पूछ रही हैं जैसे शायद कोई बाजार जाने की बात हो। तो क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सारी बातों को अगर सामने रखें, कुरान भी, और साथ ही साथ चंद जुमले मुझे बोलने दीजिए आज के हमारे कल्चर के, और वो क्या है कि हम औरतों को पाँव की जूती समझते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना, औरत को हल्का समझना, औरत है इसलिए वो बेवकूफ़ी होगी, औरत है इसीलिए वो फिर नकम्मी ही होगी, चुप करो औरतें नहीं बोलती। आज हमारे यहाँ औरतों को क्या तसव्वुर दिया जाता है, आप देखिए कि कई दफ़ा उनको इस तरह से नहीं फील कराया जाता कि तुम कोई बहुत ही दूसरे दर्जे की खातून हो, नहीं, औरत तो माँ है, औरत तो बहन, औरत तो बेटी, औरत तो बीवी, कौन सा रूप है औरत का जो खूबसूरत नहीं। कहते हैं ना कि हमारे कल्चर में कहीं बल्कि ने लिखा हुआ पढ़ा था कि कौन कहता है कि औरत का कोई घर नहीं होता, बल्कि औरत के बगैर कोई घर घर नहीं होता। आप घर ना हो देखिए जरा सब किधर, अम्मी अम्मी, बाद में अम्मी को शक्ल भी कोई ना दिखाए, बेगम बेगम किधर थी, बेगम घर है, शुक्र है भाई ठीक है काम करते, फिर बोलेंगे भी नहीं सारा दिन आपसे, है कि नहीं। औरत को घर में देखकर मर्द को खुशी होती है, चाहे वो किसी रूप में भी हो, बिलीव मी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि औरत को इज्जत नहीं दी, ये तो औरत पता नहीं कहाँ से इज्जत लेने निकली और अपने जो कुछ उसको अल्लाह ने दिया था वो सारा कुछ भी इधर उधर करके आ गई। तो औरतों से अच्छा रहना चाहिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अपने घर वालों में सबसे अच्छा हूँ। पीछे हम पढ़ चुके हैं शौहर बीवी के हकूक में भी, और देखिए बाहर अपने जैसों और मर्दों का मर्दों के साथ अच्छा ताल्लुक तो एक बहुत आम बात है, समझ आती है, औरत अमूमन कमज़ोर समझी जाती है। अल्लाह के नबी ने कहा कि औरतों के मामले में डरो, अल्लाह ने इनको तुम्हारे दस्तरस में दे दिया है। और अमूमी तौर पर, यानी इस वक्त हम वाइफ की बात नहीं कर रहे, विमेन की बात कर रहे हैं, तो किसी सोसाइटी में किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो विमेन राइट के नाम पर झंडे लेकर खड़े हो, एनजीओस बने, और एनजीओस में इस तरीके की गंदगी और बेहूदगी है हकूक के नाम पर कि यकीन करें कि अभी चंद दिन पहले एक रिपोर्ट थी, तो मैं यहाँ बैठ के बता नहीं सकती कि विमेन राइट या औरतों का अपने आप को आगे करने का तरीका कितना बेहुदा, बेहंगम और हया से दूर था। और अपने मुल्कों की बात है कि तुम हमें हल्का समझते और हम तो ये कर सकते हैं और हम वो कर सकते हैं, कभी सहाबियात को और अच्छे अदवार में जबकि मुसलमान अरूज पे थे औरतों को अपने हकूक के लिए लड़ना नहीं पड़ा। हाँ, औरत का एहतराम तो करना है, लेकिन सवाल पैदा होता है, अब जुमला लिखिए, आज औरत को फिर अपने लिए इज्जत क्यों मांगनी पड़ रही है, बात समझ लीजिए। आज की औरत वो इज्जत मांग रही है, वो हुस्ने सलूक मांग रही है जो अल्लाह और उसके रसूल के जरिए से मिला था। उसकी वजह यह है कि आज की औरत ने वो सब उतार के फेंक दिया जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने उस पर जिम्मेदारियाँ आयद की थी। औरत की इज्जत कब होगी, जब वो औरत होगी, जब औरत एक दूसरा मर्द बन जाता है, और फिर औरत का मुकाम घर से ज़्यादा बाहर, और औरत और मर्द में कोई फ़र्क ही नहीं, सिर्फ बटन इधर लगा दें तो ये औरत का कोट है और उधर लगा दें तो मर्द का है, इस तरफ राइट लेफ्ट है तो ये है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, इससे फिर औरत की इज्जत खटी है। आज हुआ क्या कि औरत को पहले तो मर्द बनाकर खड़ा किया गया इक्वलिटी के नाम पे, बराबरी जी, कंधे से कंधा मिलाओ, कैसे मिलेगा, औरत का तो कद अमूमन छोटा होता है मर्द से, फितरत का असूल है, वही बात है, कुर्सी का कद आप टेबल के बराबर तो नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक धोखा है। और मैंने तफसीर में एक जगह बहुत डिटेल से ये बात बताई थी कि इस दौर टू डे यानी दिस इरा, मुराद जो है इस सिरे में दो चीज़ों को सामने लाकर मुस्लिम्स को कन्फ्यूज़ किया गया, और उसमें से एक चीज़ क्या थी, मुसलमान औरत को एहसास से कमतरी दे दिया गया कि तुम कमज़ोर हो, तुम घटिया, ये पर्दा तुम्हारी रुकावट है, चादर और चार दीवारी, घर और घरदारी, और नमाजें भी आदी कर दो अगर हमारी गवाही आदी है, ये फजूल बातें हैं। आज भी औरत औरत बन के रहे उसको इज्जत मिलती है। देखिए इस्लाम ने तो औरत को एक रानी, एक मलका का मुकाम दिया है, मिसाल दूसरे मैंने पहले दी हुई है पहले किसी पुराने लेक्चर में, लेकिन चूंकि इस वक्त आप लोगों को खैर देना चाहती हूँ, आप देखिए कि शायद वेस्टर्न माहौल में पलते हुए हमारे जहनों में ये सवाल उभरे, इसलिए मैं बात ये ज़्यादा डिटेल से करने वाली हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप इसको अगर देखें तो आप देखिए कि एक औरत बेचारी घर का काम समेटती है, फिर जल्दी से घर से निकलती है, ग्रोसरी स्टोर में आती है, गाड़ी लॉक करती है, सम टाइम बच्चा भी साथ होता है, उसकी भी वो भारी सी सीट उठाती है, अंदर गई, कॉट ली, जो भी लेके एक एक आइल में घूमी फिरी, फिर वहां से शॉपिंग करके फिर लाइन में लग गई। जब लाइन में लगी तो एक एक चीज टेल पे तुली, पैसे दिए लिए, इतना वजन जमा हुआ। अब ये सारा इकट्ठा कर करा के वापस पार्किंग लॉट में आती है, और उसके बाद फिर वो गाड़ी में पहले बच्चे को सेट करती है, फिर उसके बाद वो उस गाड़ी में सामान रखती है कितनी मुश्किल से। फिर वो बड़ी मुश्किल से बचती हुई जाती, कई दफ़ा एक्सीडेंट होते होते घर आती है। अब घर आएगी, पहले बच्चे को मूव करेगी गाड़ी से, वो रो रहा है तो उसको सेटल करेगी, फिर जो सामान लेकर आई है उसको पकड़ कर मैनेज करेगी। इतने में खाना पकाने का वक्त है, बच्चों को लेने का वक्त हो गया, आधा पकता छोड़कर करते कराते दोबारा घर से निकलेगी। है ना, एक आम लाइफ स्टाइल है। हो सकता है गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसको मैकेनिक पे भी लेके जाना पड़े, हो सकता है कि पेट्रोल डालना पड़े तो वो जाकर खुद ही वहाँ गैस स्टेशन पे पेट्रोल भी डाल रही है। कोई बीच में एक दो काम दिन रात में आ जाते हैं ऑफिस वर्क के, कोई भी को पेपर लेना है, कोई टोकन लेना है, वाट एवर, ये सारे काम एक औरत करती है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि शाम को वो शौहर घर आए तो वो औरत उसके लिए बनी ठनी, फ्रेश रिलैक्स और खूबसूरत खाना बना हुआ और घर साफ सुथरा, इज़ इट पॉसिबल? ये तो औरत के साथ इतनी बड़ी ज्यादती है, मैं कहती हूँ कि औरत को हक देते देते जुल्म होने लग गया उसके ऊपर। इसके बरक्स अब अपोजिट एक मर्द है, घर से जा रहा है सुबह, बेगम उसको कह देती है भाई ये लिस्ट है ये आप ले आइएगा शाम को, या बहुत हुआ साथ भी गया। मर्द सारे काम करता है, ट्रॉली पकड़ने से लेकर, वो रानियों की तरह उठा उठा कर चीज़ें ट्रॉली में डाल रही है, ये भी लेना है ये भी ट्राई करना है कराना है। उसके बाद वो पीछे और वो लाइन में लगकर सामान ले रहा है, पे कर रहा है, गाड़ी में रखा रहा है, फिर गाड़ी से निकालने में मदद कर रहा है, फ्रिज में चीज़ें रखवा रहा है। मुझे बताइए किस औरत को हक ज़्यादा मिला? आइडियल कौन है, पहली के दूसरी? सिर्फ पहली को। अब ये सोचे चूंकि उसका अपना फ़ोन है, चूंकि उसकी अपनी गाड़ी है, क्योंकि उसके अपने नाम की चेकबुक है और उसका अपना क्रेडिट कार्ड है, ये कोई आज़ादी है? ये तो निरी मुसीबतें हैं। आपके से इस जगह की चाबी है अगर, तो क्या ये आपके लिए कोई बहुत रिलैक्सिंग बात है? ये तो बहुत जिम्मेदारी की बात है। इस्लाम ने औरत को रानी बनाया है, मलका बनाया। कहते हैं कि अक्लमंद है वो औरत जो अपने शौहर को पहले बादशाह बनाती है फिर बादशाह की बीवी बन के जीती है, और वो औरत जो अपने शौहर को गुलाम बनाती है और फिर बाद में गुलाम की बीवी बन के जीती है। ये औरत मर्द की डिस्क्रिमिनेशन समझने की ज़रूरत है। इस्लाम ने बहुत सारा हक दे दिया, हमने असल में उसको समझा नहीं है। तो क्या पता चला, औरत अगर औरत बनकर जिए, और आपको क्या पता है कि डिपेंडेंट बनने में क्या मज़ा है? ये बच्चे जो सारा दिन हमें तंग करते हैं, ये हमारे डिपेंडेंट है तभी तंग करते हैं, जिसे ये खुद खाने पीने लग जाते हैं हमारे हाथ भी नहीं आएंगे। जिससे बंदा लेता है ना उससे डरता है। तो ज़रूरत है इस बात की कि औरतों को किसी मुआशरे का बहुत बाइज्जत रुकन समझा जाए। अल्लाह के नबी सल्लम अपनी बीवियों से, आम औरतों से मशवरा भी लेते थे, इज्जत भी करते थे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का मशवरा था जिसने सुलह हुदैबिया के मौके पर एक बहुत बड़ी खाना जंगी को रोक दिया था, मशवरा था, वरना अल्लाह के नबी तो जज्बाती तौर पे बहुत टूट जाते कि मैं कह रहा हूँ इहराम खोल दो और कोई खोल ही नहीं रहा, और वो साथी जो कभी बात दोबारा कहने की नौबत ही नहीं आने देते थे। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम आम औरतों को भी इज्जत देते थे। तो ज़रूरत है इस बात की कि औरत को इज्जत दी जाए, उसके साथ अच्छा मामला किया जाए और उसको समझें कि वो कमज़ोर है। आप 10 किलो का डब्बा एक मर्द को पकड़ाएं और कहें कि यहाँ से आपने वो कॉर्नर तक जाना है, और 10 किलो के डब्बा आप एक औरत को पकड़ा दें, आसानी से कौन उठाकर पहुंच जाएगा? मर्द पकड़ेगा, वो कहेगा तुम मुझे अपना भी दे दो। वो दोनों हाथों में दो डब्बे लेगा, औरत अपना भी लेके चली जाए तो बड़ी बात है ना। अल्लाह ने इज्जत दी है तो डिपेंडेंट बन के रहे। यानी आपको जो मैं अंदर से आज नुक्ता देने लगी ना, बी डिपेंडेंट, जो इसमें मजा है। आप क्यों कवाम बनी फिर रही हैं? अब यहाँ फिर एक साइड का इशू आएगा, लेकिन शायद किसी को फायदा हो जाए। जब औरत मर्द को सपोर्ट करने के लिए या उसको असिस्ट करने के लिए एक दफ़ा पैसा कमाने लग जाती है ना, फिर बहुत कम ही वापस आई, और मर्द की वो इज्जत भी उसको नहीं मिली। कई सिस्टर्स हैं, मुझे एक याद आ गई, इसीलिए शायद उन्हीं की नाम जो सदका जारिया चला जाए अगर कोई खैर हो जाए। अच्छी खासी कुरान पढ़ रही थी, अच्छा खासा उन्होंने एक कोर्स किया, और जो भी अल्लाह ने उनके नसीब की, शी वॉज़ वेरी गुड स्टूडेंट, यानी वेरी पर्टिकुलर, हर चीज़ को मीन वेक से करने वाली। जब अगला कोर्स शुरू हुआ तो उन सबकी तरह उन्होंने भी करना था, तो उन्होंने एक अपना उजर दिया कि मुझे करना है ये कोर्स, बट आई नीड अ ब्रेक। कितना ब्रेक क्यों? वजह के अंदर से निकली सारी बात का किस्सा कि इतना कुरान पढ़ लिया, अब इसके बाद चैन नहीं आ रहा, घर कर्ज पे, और कर्ज में आपको पता है इंटरेस्ट होता है मोस्टली। तो मैं कुछ देर जॉब करूँगी, फिर मैं और मेरे शोहर दोनों मिलकर कमाएंगे, तो घर का कर्ज जल्दी उतर जाएगा, और जूं ही ये कर्ज खत्म, आई विल कम बैक। ये उन स्टूडेंट्स में थी कि जिन पे मैंने क्या नज़रें लगाई हुई थी, एज अ स्टूडेंट नज़रें लगती हैं, पहले ही पता होता है कि ये इसकी स्किल्स क्या। वो चूंकि समझदार थी बहुत, यानी नपी तुली थी, डिसेंट थी, मैंने कहा इनको मैंने किसी ऑफिस में बिठाना है, बिकॉज शी विल बी अ गुड एसेट टू स्कूल। आज तक वापस नहीं आई, मुलाकात होती है, पूछा घर का कर्जा उतर गया, वो क्या उतरना था और चढ़ा लिया। याद रखिए, ख्वाहिशें जो होती ना, बावले कुत्ते की तरह बंदे को दीवाना कर देती हैं। नहीं आ सकी, अच्छी सिस्टर है, मिलती भी है, आ नहीं सकी। वो फिर ये भी कर लूँ, वो भी कर, और वो आगे रास्ते खुलते रहते हैं। आप आज $2,000 कमा रहे हैं, कल आपको 2,500 ऑफर हो जाएगा, परसों 3, अच्छा आज नहीं आप छोड़ सके तो आप अगले 5 साल बाद तो और आपकी जड़ें पक्की हो चुकी होंगी। कई लोगों को मैं देखती हूँ, मैं पुराने लोगों को जब मिलती हूँ, मैं इर्द गिर्द जाती हूँ कई जगहों पर, आप भी जानते हैं कि ताल्लुक़ है कई साल से, जब मैं दोबारा जाके मिलती हूँ, सुनाओ उनका क्या हाल है। इस दफ़ा भी मैंने एक जगह पूछा, जब मैं पढ़ाती थी वहां तो उस वक्त उनका उजर था, बस ये हम छोड़ देंगे स्टोर जिसमें लीकर था, बस छोड़ देंगे सर, ये काम हो जाए। और याद रखिए कि जहां कमाई में कोई गड़बड़ आ जाती वहां इल्म नहीं मिलता, इल्म आता ही तब है जब पेट में पाक जाता है। किस्सा मुख्तसर, वो तब नहीं आती थी, बस मैं मियाँ सा काम कर लूँ, हम ये स्टोर छोड़ देंगे, हमने छोड़ना है। इस दफा भी मुलाकात हुई या जो भी हुआ, अभी तक नहीं छूटा। 18 ईयर्स टू डिसाइड कि मैंने ये हराम छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, और मुंह पे क्या छोड़ना है, तो लोग कहते छोड़ो, ये बहुत देर से कह रहे हैं, ये हालात होते हैं, नहीं आने देती ये चीज़ें। कोई भी काम, वापस औरतों के टॉपिक पे आ जाइए, आप औरत बन के जिए, ख्वाहिशें कम रखें, शॉपिंग कम करें, खर्चा कम करें। सुघड़ औरत तो मैं कहती हूँ कि 1 हफ्ते का जो उसके पास सामान होता है उसमें पूरा महीना गुजार लेती है। हमारे बड़े ऐसे ही थे, कौन सी मिलने थी नाना और दादाओं के, और बड़े थोड़े थोड़े पैसों में गुजारे करती थी। औरत घर से निकले ना, मैं कहती हूँ खर्चा ही नहीं होता। आप घर से निकल कर तो देखें फिर क्या क्या खर्चे होते हैं उल्टे सीधे, और जब कंट्रोल भी ना हो, इज्जत करवाइए। औरत की सबसे बिग खूबसूरत दो जॉब हैं, और आप कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं तो इसका क्या, देखिए दो काम करती थी औरतें अल्लाह के नबी के भी दौर में, घरों में रहकर बच्चों की तरबियत और घर से निकलना, या कह लीजिए कि वो भी असल में फिर बच्चों ही की तरबियत पे जाएगा, खुद सीखना, तालीम और तरबियत। और आज भी मैं अक्सर साथियों से कहती हूँ कि अगर किसी को वाकई हालत मजबूरी, शौक, अगर औरत का बेस्ट सूटेबल प्रोफेशन यानी एज अ जॉब इवन, तो इट्स टीचिंग। जो औरत एक अच्छी टीचर बन सकती है, मर्द नहीं बनता। बच्चों के लिए माँ के दिल में जैसे नरमी होती है ना, उस्ताद के दिल में भी होती है। यानी औरतों को मजबूरी में कुछ करना है ना, घर में कीजिए। मनी अगर वाकई इज अ मैटर, घर बैठकर कई लोग उन औरतों से बहुत ज़्यादा कमाते हैं जो बेचारियाँ सारा दिन घर से बाहर रहती हैं, कमा भी लें तो उनका खर्चा इससे ज़्यादा हो जाता है। रोटियाँ बनानी सबको आती हैं, खाने मज़े मज़े के हर एक को बनाने आते हैं, पैसा कमाना इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन जब औरत घर को निगलेक्ट कर कर दूसरी चीज़ों में पड़ती है ना, बच्चे मुतासिर होते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हर एक पे रहम करे। बहुत सारे सवाल होंगे आपके जहनों में, फिर हम पढ़ते हैं तो हम क्या करें, ये भी क्वेश्चन है। आपकी बेटियाँ जब आप प्रोफेशन चूज़ करने की उम्र में आए, उनको असिस्ट कीजिए। बिलीव मी, अगर आप बेस्ट मदर है ना, तो अपनी बेटी को जो सब्जेक्ट्स वो चूज़ करेगी ना, बेस्ट सब्जेक्ट्स उसके लिए क्या होंगे, जिससे उसको औरत बना कायम रहे, जिसकी वजह से वो एक अच्छी टीचर बन सकती है, वो किसी बच्चों को पढ़ा सकती है, वो होम इकोनॉमिक्स का काम कर सकती है, वो फूड में कहीं अंदर जा सकती हैं। लेकिन औरतों को वो प्रोफेशन चूज़ ही नहीं कराने चाहिए जो बाद में आजमाइश बना दें, जहाँ फिर उनका डायरेक्ट क्लोज इंट्रैक्शन मर्दों और दूसरों के साथ हो। क्लियर है, सीधी सीधी लाइन ऑफ एक्शन है दिमाग में, अल्हम्दुलिल्लाह।